ओम शांति। आज सुंदर सुनहरी संध्या में जहां पर हम सभी देख रहे हैं माउंट आबू की अरावली पर्वत की श्रृंखलाओं के बीच ज्ञान सरोवर एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड एक सुंदर आध्यात्मिक ऊर्जावान स्थान पर आज हम सभी संत महंत और अतिथि विशेष पधारे हुए हैं। तो आज बहुत सुंदर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। वर्तमान परिस्थितियों में आध्यात्म से समाधान। हम सभी देख रहे हैं कि सकारात्मक परिवर्तन वर्ष के अंतर्गत वर्तमान परिस्थितियों में आध्यात्म से समाधान इस सुंदर विषय को लेकर के आज धार्मिक प्रभाग इस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करने जा रहा है। तो आप सभी दूर दूर से भारतवर्ष से इस ज्ञान सरोवर के प्रांगण में विशेष रूप से पधारे हैं। तो आप सभी सम्माननीय माननीय रहनुमाओं का महानुभावों का संत गणों का एवं विशेष अतिथियों का हम ब्रह्मा कुमारी की ओर से बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं स्वागत करते हैं स्वागत करते हैं स्वागत करते हैं। और आज का इस कार्यक्रम शुरू करने से पहले इस मंच को सुशोभित करने के लिए मैं हमारे बीच में उपस्थित विशेष संत गण अपना अमूल्य समय निकाल करके अपनी अमूल्य क्रियाओं को स्टॉप करके आज इस ज्ञान सरोवर परिसर में पहुंचे हैं। तो मैं उनको निवेदन करती हूं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूं हमारे अतिथि विशेष के रूप में ब्रह्मसी स्वामी महेश योगी। ब्रह्मसी स्वामी महेश योगी जी अयोध्या से हमारे बीच में पधारे हैं। आपसे मैं अनुरोध करती हूं कि मंच पर आए और मंच की शोभा को बढ़ाए। महाराज पवन कुमार दास फलाहारी अयोध्या से हमारे बीच में पधारे हैं। आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आप मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। संत चेतन आनंद जी, संत चेतन आनंद जी सिरसा हरियाणा से हमारे बीच आई है। आपका भी हम दिल से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं मंच पर आए। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि इन सभी सम्माननीय संतों का आप ताली बजा करके स्वागत करते रहे। पूज्य श्री मणिप्रम बसप्पा स्वामी जी कुंड गोल कर्नाटक से हमारे बीच में आए हैं। आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर आइए। श्री संजय भाई उपाध्याय, श्री संजय भाई उपाध्याय व्याकरणाचार्य बड़ौदा से हमारे बीच में पधारे हैं। आपसे भी मैं अनुरोध करती हूं कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आज के इस स्टेज की अध्यक्षा राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी तपस्वी ब्रह्मा कुमारी मनोरमा दीदी जी से मेरा अनुरोध है, आप भी मंच पर आए और मंच को सुशोभित करें। हमारे बीच में परम आदरणीय ब्रह्मा कुमार करुणा भाई जी चेयरपर्सन मीडिया मल्टीमीडिया माउंट आबू से, भाई साहब से अनुरोध है कि मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आज विशेष हम सबको अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित करने के लिए हमारी राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी, संयुक्त प्रशासिका ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू दीदी से भी मेरा अनुरोध है कि मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। तो आज इस संध्या की सुंदर वेला में आध्यात्मिकता से तरोताजा परिपूर्ण वातावरण के बीच आज बहुत सुंदर परमपिता परमात्मा शिव, जो गुरुओं का गुरु है, जिसने एक बहुत सुंदर वाक्य कहा है कि जब मैं इस संसार में आता हूं तो इस संसार को परिवर्तन करने का सर्वश्रेष्ठ कार्य करता हूं। तो उस पिता परमात्मा की प्रेरणा से आज की इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। तो इसकी शुरुआत करने से पहले मैं उस परमपिता परमात्मा का भी आह्वान करती हूं और उसे परमात्मा पिता के आह्वान से ही, याद से ही आज के कार्यक्रम की शुभारंभ करते हैं। बहुत सुंदर गीत की हम सबने लाइन सुनी कि ईश्वर से जो प्रीत जोड़ता है वो ही गुणवान बन जाता है। तो आज हम इस चर्चा को लेकर के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि आध्यात्मिकता के द्वारा वर्तमान समय जो विषम परिस्थितियाँ पूरे विश्व में, देश में, समाज में, गांव में, हर परिवार में उपस्थित हो रही है, तो उसको हम कैसे आध्यात्मिकता के द्वारा हम अपने जीवन में समाधान को प्राप्त कर सके। तो आज हमारे मंच पर बहुत विशेष अनुभवी मूर्त महानुभाव, जो कि प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और आप सबके प्रिय, ऐसे महानुभाव उपस्थित हैं। तो एक बार करतल ध्वनि से हमारे मंचासीन सभी मेहमानों का, संतों का, महानुभावों का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि मंचासीन सभी महानुभावों का, संतों का, महानुभावों का और हमारे राजयोगी दीदियों का भी फूलों के द्वारा बैजेस लगा करके और दुपट्टा पहना करके सम्मान करेंगे। और साथ साथ मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस सभा में हमारे कुछ कथावाचक आए हुए हैं, संत आए हैं, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप आइए और पीछे की सीट पर आप बैठेंगे। आप सबका भी आज सम्मान किया जाएगा। अभी स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे इसी ज्ञान सरोवर निवासी भाई भ्राता नितिन भाई जी, गोविंद भाई जी, मोहित भाई और अर्जुन भाई, आप सबके स्वागत में बहुत सुंदर अपने शब्दों के द्वारा स्वरचित सुंदर गीत की प्रस्तुति आप सबके सामने रखेंगे। एक बार मधुर वाणी ग्रुप के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत सुंदर गीत की प्रस्तुति आप सबके सामने रखेंगे।
सकारात्मक परिवर्तन को प्रभु ने किया आह्वान है, वर्तमान परिस्थितियों का अध्यात्म में समाधान है। सकारात्मक परिवर्तन को प्रभु ने किया आह्वान है, वर्तमान परिस्थितियों का अध्यात्म में समाधान है। विश्व नव निर्माण में करना हमको योगदान है, धार्मिक सम्मेलन में आपका स्वागत है, सम्मान है, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। बाजार में सत्य धर्म खोया है, पवित्र का सुख शांति खोई, सदाचरण भी रोया है। धर्मों के बाजार में सत्य धर्म खोया है, पवित्र का सुख शांति खोई, सदाचरण भी रोया है। धर्म ग्लानी बेला यही अवतरित हुआ भगवान है, वर्तमान परिस्थितियों का अध्यात्म में समाधान है, विश्व नव निर्माण में करना हमको योगदान है। धार्मिक सम्मेलन में आपका स्वागत है, सम्मान है, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम। योग का योग सिखाने योगेश्वर शिव आए हैं, एक पिता एक राज धर्म वो विश्व एकता लाए हैं। राजयोग का योग सिखाने योगेश्वर शिव आए हैं, एक पिता एक राज धर्म वो विश्व एकता लाए हैं। आपको प्रभु तीर्थ बनाकर कर रहा जग कल्याण है, वर्तमान परिस्थितियों का अध्यात्म में समाधान है, विश्व नव निर्माण में करना हमको योगदान है। धार्मिक सम्मेलन में आपका स्वागत है, सम्मान है, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम, शुभ स्वागतम, शत स्वागतम।
आप तालियां भी बजा सकते हैं साथ साथ एक रिदम में, अपनों का अपने घर में अपनों द्वारा स्वागत।
पवित्रता का लिए पताका शिव शक्तियां चल पड़ी, सबको पावन करने ज्ञान गंगाएं हैं निकल पड़ी। पवित्रता का लिए पताका शिव शक्तियां चल पड़ी, सबको पावन करने ज्ञान गंगाएं हैं निकल पड़ी। ज्ञान सरोवर में ज्ञान सागर दे रहा वरदान है, वर्तमान परिस्थितियों का अध्यात्म में समाधान है, सकारात्मक परिवर्तन को प्रभु ने किया आह्वान है, वर्तमान परिस्थितियों का अध्यात्म में समाधान है। विश्व नव निर्माण में करना हमको योगदान है। धार्मिक सम्मेलन में आपका स्वागत है, सम्मान है।
शुभ स्वागतम।
बहुत बहुत धन्यवाद मधुरवाणी ग्रुप को, नितिन भाई और ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर आप सभी का स्वागत किया। और अभी स्वागत श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में नन्हे मुन्ने बच्चे अपने नृत्य कला के द्वारा आप सभी का स्वागत करने के लिए पहुंच रहे हैं। कुमार निशान, कुमारी समीक्षा, दिल्ली नारनौल से हम सबके बीच में बहुत सुंदर नृत्य लेकर के पहुंच रहे हैं। इन नन्हे मुन्हे फरिश्ते आप सबके मन को मोहित करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए स्वागत नृत्य लेकर के हम सबके बीच में पधार रहे हैं।
सब मंगल गाओ, आज शुभ दिन है ये आया। सब मंगल गाओ, आज शुभ दिन है ये आया। गाए धरती और गाए अंबर, तिहु लोक से बरसे ये प्रभु कृपा का सागर। सब मंगल गाओ, आज शुभ दिन है ये आया।
आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं अनंत है। आज तो अपने हर्ष का मिलता कहीं अनंत है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है। आगमन से आपके आनंद ही आनंद है।
शुभ स्वागतम, शत स्वागतम,
शुभ स्वागतम,
शुभ स्वागतम।
जोरदार तालियों से अभिवादन करें। इतना सुंदर परफॉर्मेंस हम सबके बीच में रखा और आप सभी का इतना दिल से स्वागत किया। कुमारी समीक्षा, कुमारी कुमार निशान। अभी आज का हमारा विषय है वर्तमान परिस्थितियों में आध्यात्म में समाधान। तो आज हम सभी देखते हैं कि आध्यात्मिकता क्या है। हम सभी देख रहे हैं कि आध्यात्मिकता और विज्ञान दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन वर्तमान समय देखा जाए कि आध्यात्मिकता की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है और आध्यात्मिकता से हम अपने जीवन में कैसे समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर हम चारों ओर अपनी नजर दौड़ाते हैं तो मालूम पड़ता है कि आज इंसान आधुनिकता की दौड़ में इतना निर्मलता से दौड़ रहा है क्योंकि आधुनिकता की इच्छाएं, आधुनिकता को पाने की थोड़ी सी अल्प इच्छाएं इंसान को दिन प्रतिदिन गुलाम बनाती जा रही हैं। और उस गुलामी के कारण आज संसार का व्यक्ति आधुनिकता से तो अपडेट हो रहा है, उसकी फिजिकल पर्सनालिटी तो बहुत अच्छी बन रही है, लेकिन देखा जाता है उसकी आंतरिक पर्सनालिटी, उसकी आंतरिक शक्तियां दिन प्रतिदिन डाउन होती जा रही हैं। तो आवश्यकता है कि आध्यात्मिकता हमें क्या करती है, क्योंकि आज इंसान छोटी छोटी इच्छाओं का गुलाम बन करके रह जाता है और सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक चीजें, सांसारिक साधनों को प्राप्त करने के लिए विषय, वासनाएं, विकारों की दलदल में धंसता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। और जब एक समय आता है कि जब वो इतना अंदर से टूट जाता है, चिंताओं की चिताओं पर बैठ जाता है और समय से पहले उसकी चिता तैयार हो जाती है, तो ऐसे समय पर आवश्यकता है कि हर व्यक्ति को अपने अंदर की यात्रा करने की आवश्यकता है। जब हम शांति की खोज में निकलते हैं तो हम फिजिकल यात्राएं करते हैं और थोड़े समय के लिए शांति प्राप्त करते हैं, लेकिन इस शांति को प्राप्त करने का साधन बाहर की तरफ नहीं है, अपने अंदर की तरफ है। तो सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि अंदर में क्या है। तो पहला हर इंसान अपने आप से ये प्रश्न पूछे, Who am I? मैं कौन हूं? क्योंकि जहां मैं और मेरापन आता है वहां इंसान के अंदर ईगो आता है, और जहां ईगो आता है, कहते हैं जहां ईगो आता है एनर्जी गो आउट, यानी हमारी अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है, हमारी अंदर की जो आंतरिक शक्तियां हैं, वो धीरे धीरे बाहर आने लगती हैं। इसीलिए जब व्यक्ति का जीवन इगोइस्ट बन जाता है, तब वो सबसे ज्यादा डर, घबराहट, चिंता, तनाव, सुसाइड आदि अपनाता है। इतना ही नहीं, आज हम देखते हैं, हमारे पहले मीडिया कर्मियों का बहुत अच्छा एक प्रोग्राम हुआ था, तो देखा जाता है कि आज हम सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर के अंदर इतनी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि लूट मार, पापाचार, भ्रष्टाचार, रेप, अत्याचार आदि आदि दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसे समय पर आवश्यकता है कि व्यक्ति को अपने भीतर में जाकर के उस असली मैं को, कि मैं कौन हूँ, जो कि शिशु विश्वविद्यालय का सर्वप्रथम ये लेसन है, सर्वप्रथम ये राज्यों का सत्र है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। और जिसने इस मैं को पहचान लिया, तो किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि जिसने स्वयं को पहचाना उसने खुदा को पहचाना, जिसने स्वयं को पहचाना उसने अपनी शारीरिक आंतरिक शक्तियों को पहचाना। तो अभी इसी विषय के ऊपर अपना सुंदर प्रवचन देने के लिए, और आप सभी का जो कि आप हमारे जो दूर दूर से संत महंत और हमारी राजयोगिनी दीदियां उपस्थित हैं, उनका शब्दों के द्वारा स्वागत करने के लिए हमारे इस संस्था के वरिष्ठ भाई ब्रह्मा कुमार रामनाथ भाई जी, जो कि आप इस संस्था के हेडक्वार्टर, धार्मिक प्रभाग के हेडक्वार्टर, जोनल हेडक्वार्टर के आप कोऑर्डिनेटर हैं, जो कि आज ये सुंदर प्रोग्राम हम देख रहे हैं वो आपने ही ऑर्गेनाइज किया है। तो मैं रामनाथ भाई जी के लिए इतना कहना चाहती हूँ कि आप बाल्यकाल से ही इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में ज्वाइन किया और अपनी स्टडी करके, जॉब करके, जब परमात्मा पिता का आदेश मिला तो अपने जीवन को विश्व के लिए और समाज के लिए, देश के लिए समर्पित कर दिया। तो ऐसे हम अपने प्यारे ब्राता राजयोगी ब्रह्मा कुमार रामनाथ भाई जी, जो कि आप एक बहुत वक्तव्य मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बहुत सुंदर मेडिटेशन रिट्रीट कराते हैं, विभिन्न विभिन्न मेडिटेशंस की प्रैक्टिस करवाते हैं, और अन्य स्थानों पर जाकर के आपकी वाणी से हजारों लाखों आत्माएं लाभान्वित होती हैं, तो आपके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपकी रूहानी आभा से, आपकी रूहानी आभा से सबके जीवन को सुसंस्कृत कर दीजिए, आपकी प्रसन्नता को विस्तृत कर दीजिए, आपकी तेजस्वी वाणी से, सुंदर अनुभवों से सभी के मन को शीतल कर दीजिए। ऐसे हमारे प्यारे रामनाथ भाई जी हम सबका शब्दों के द्वारा स्वागत करने के लिए मैं मंच पर अनुरोध करती हूँ।
ओम शांति, ओम शांति। परमपिता शिव परमात्मा के स्मृति में मंच पर विराजमान सभी संत महंत, इन सब का, साथ में बड़ी दीदियों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। और मंच पर विराजमान आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी, संयुक्त प्रशासिका ब्रह्मा कुमारीज, डायरेक्टर ज्ञान सरोवर, साथ में राजयोगी करुणा भाई जी, चेयरपर्सन मल्टीमीडिया माउंट अबू, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी मनोरमा बहन जी, अध्यक्ष धार्मिक प्रभाग प्रयागराज से आई है, आदरणीय ब्रह्म ऋषि स्वामी श्री महेश योगी जी अयोध्या, आदरणीय श्री महाराज पवन कुमार दास जी फलाहारी अयोध्या, आदरणीय श्री संत चेतन आनंद जी सिरसा, आदरणीय पूज्य श्री बसवप्पा स्वामी जी कुंडगोल कर्नाटक से आए हैं, श्री संजय भाई उपाध्यक्ष व्याकरणाचार्य बड़ौदा से आए हैं, और सभा में उपस्थित सभी ईश्वर के प्रिय संतान, आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज आप और हम सभी एक लक्ष्य लेकर के इधर आए हैं। क्या लक्ष्य है? सब जगह कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, कहते हैं सनातन संस्कृति के अंदर एक ही शब्द है, एक ईश्वर है और एक सभी परिवार है, वन गॉड वन फैमिली कहते हैं। तो फिर प्रश्न आता है, तो ये सभी धर्म अलग अलग मान्यताएं, अलग शास्त्र, इनका ये है इनका ये विचार। अगर आप देखेंगे सारे शास्त्र का निचोड़ निकालो, एक ही है, एक ईश्वर को प्राप्त करना है। और जीवन में जो भी माया मायावी दुनिया कहते हैं, उन सब से मुक्त होना चाहते हैं। इन सब का उपाय भी अगर आप देखेंगे, गीता में एक जगह आया कि बहुत मोह माया है, तो उन सब माया से मुक्त होना चाहो, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा का। तो मोह से मुक्त होना चाहते हो तो स्मृति कहां है? तो बहन जी अभी बता रही थी कि हमारे जीवन में सारा विश्व भी कहता है कि भारत के अंदर सारे विश्व के अंदर ज्ञान की कोई कमी नहीं है, कितने शास्त्र भरे हुए हैं, कितने मंदिर हैं, कितने धर्म हैं, किसकी कमी है? फिर भी कहते हैं आध्यात्मिकता की कमी है, लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन अवर एजुकेशन, हमारे पढ़ाई के अंदर आध्यात्मिकता नहीं है। तो आप पूछेंगे आध्यात्मिकता कहां से आएंगी, क्या चीज है ये? साधारण शब्द है, एक भारत देश है, कभी भी एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, दो हाथ जोड़ता है। तो ये भौतिक है, शास्त्रों में सब जगह हर एक व्यक्ति मानता है, ये सारे ब्रह्मांड के अंदर दो शक्तियां हैं, प्रकृति और पुरुष, फिजिकल एनर्जी एंड मेटाफिजिकल एनर्जी। प्रकृति को जानते हो तो प्रकृति के अंदर पांच तत्व है, ये पांच तत्वों से बना हुआ ये चैतन्य ये शरीर है। इस शरीर में किसने जन्म लिया, कौन शरीर छोड़ के गया, बच्चा जन्मते ही लंगड़ा अंधा काला गोरा ये कौन करता है? तो ये इसके ज्ञान नहीं है। तो वो शक्ति क्या है? तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप पूछेंगे, भारत में कोई भी माता अगर मंदिर में जाती है, कभी भगवान से ये नहीं कहेगी भगवान इस बच्चे को बहुत धन दे दो, नहीं, भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो। सिर्फ भारत में माताएं मंदिर में जाएंगी, इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, तो भगवान कब आता है, कब ये बुद्धि देगा? क्योंकि उनकी पुकार उनकी इच्छा भगवान पूर्ण नहीं करेगा तो कौन करेगा? किसको कहा उन्होंने, कोई सुनने वाला है? तब शास्त्रों में गीता में भी कहा यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भारत में आता हूं, भारत एक एक खंड है, उसके बाद अनेक खंड हो गए हैं, और ये भारत अविनाशी है, और इस भारत में शिव जयंती है। तो भगवान कौन? सत्य है, गॉड इज ट्रुथ कहा, तो कौन सत्य है वो? तब कहा सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य है वो। तो वो स्वयं आकर के सत्य ज्ञान देता है, तो उसके अंदर भी बुद्धि का ज्ञान आज तक दुनिया में कहीं नहीं सुनाया, सिर्फ एक गीता में आता है। अर्जुन को 18 अध्याय ज्ञान सुनाया, अर्जुन ने माना नहीं। भीष्म पितामह क्या कर रहे थे? सारे सेन को ध्वस्त कर रहे थे। तब देखा, हम और आप भी जानते हैं, मैं भी मानता हूं, भगवान श्री कृष्ण सामने खड़ा है। तब अंत में कहा हे अर्जुन, आप मुझे देख नहीं सकते हो, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। तो अर्जुन किसको देख रहा था? अर्जुन के सामने कौन खड़ा था? थोड़ा सोच लीजिए। ज्ञान सुनते हैं, इसलिए कहते हैं लिस्निंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग, सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं है। हम बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन वो आचरण में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है पूछेंगे आप? समझ ही नहीं है। समझ भगवान आज देने के लिए आएगा, वो कहां आएगा? अगर डॉक्टर की पढ़ना है तो इस कॉलेज में जाना पड़ेगा, इंजीनियर बनना है इस कॉलेज में जाना पड़ेगा। अगर वो दिव्य बुद्धि चाहिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, स्वयं सत्यम शिवम सुंदरम निराकार सर्वशक्तिवान, वो स्वयं आकर के बुद्धि का ज्ञान देता है। तो यहां बुद्धि योग है। तो बुद्धि के अंदर अगर ज्ञान गया, ये सारा शरीर को कौन चलाता है? हार्ट को कैसे चलाना चाहिए, लीवर कैसे काम करना चाहिए, क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, आंखें बंद करके सोए हो ये स्वप्न कौन देखता है? वो बुद्धि चैतन्य, वो कभी सोती नहीं है, जा चैतन्य शक्ति है, उसका ज्ञान नहीं था। साइंस ने पढ़ाया कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। अभी आपको स्कूल में भी कहते भाई जी ध्यान से, बच्चों को कहते ध्यान से सुनो, आप कहेंगे मेरी आंखें खुली है, मैं देख रहा हूं सुन रहा हूं, तो ध्यान क्या है? प्लीज गिव अटेंशन कहा, तो अटेंशन कहां मिलेगा? ध्यान क्या चीज है? ध्यान लगाओ का बैठे हो ध्यान करने के लिए, और कोई विचार आता है? हां मन चंचल है, बच्चा चंचल है, तो बच्चे को कौन समझाएगा? मां बाप समझाते बच्चे ऐसे नहीं करो चुप बैठो। अगर मेरा मन चंचल है मुझे कौन समझाएगा? तब दुनिया में ये शराब तंबाकू ये नशा क्यों आया? हम मन को दमन करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। तो वो आप सुनने के लिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप और हम सब इकट्ठा इसलिए हुए कि ये मन की शांति चाहिए। तो ये शांति कौन देगा? कहां से आएंगी? मार्केट में मिलेंगी? शास्त्र पढ़ते हैं, रामायण पढ़ा, गीता पढ़े, सब जानते हैं। तो बुद्धि का ज्ञान चाहिए। एक शब्द सुना समझ में आया, हां ये मुझे करना है। मन बार बार कहता है इनको देखते ही, नहीं बुद्धि पढ़ाती है ये नहीं करना ये नहीं खाना। तो बुद्धि इसलिए का इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक मंत्र है, स्वयं को पढ़ाओ, स्वपरिवर्तन। औरों को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, हर एक अपना मालिक है, हम औरों के ऊपर राज नहीं कर सकते। वन हु रूल ऑन सेल्फ, जो स्वयं पर अधिकार, इंद्रियों पर अधिकार करता है, वो औरों के ऊपर भी, औरों को भी समझा सकता है। वन हु कैनॉट रूल ऑन सेल्फ ही कैनॉट रूल ऑन अदर्स। हम चाहते दूसरों पर कुछ अधिकार करना, प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन पहले अपने मन को जीत लीजिए। तो इसलिए आप और हम सब मिलकर, इसलिए इस लक्ष्य लेकर इधर इकट्ठा हुए हैं। सुनते बहुत कुछ है कि हम मिलेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, कि ये क्या है, ये मन को कैसे जगे, मन कहां है, ये मन क्या करता है। सिर्फ सुनना नहीं है, आप भी अपना विचार बताइए कि ये कैसे होना चाहिए। कुछ सुनकर समझकर अपना जीवन को परिवर्तन करने के लिए हम आए हैं। आए बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, जाते समय खाली हाथ कुछ एक लक्ष्य लेके जाइए कि ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, यहां कोई गुरु नहीं, कोई टीचर नहीं है, स्वयं तप का ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, स्वयं ईश्वर आकर के पढ़ाता है और वो बुद्धि का ज्ञान दे रहा जो दुनिया में आज तक कहीं भी पढ़ाया नहीं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस का। उसके कारण सुनते बहुत कुछ है। तो एक ही शब्द भगवान के एक बूंद के प्यासे हैं। आज एक बूंद लीजिए, कल और एक मिलेगा, परसों और एक मिलेगा, तो वो अपने आप को पढ़ाओ। क्या मैं औरों को देखते शुभ सोच सकता हूं? सोचना जो चाहिए, सब लोग कहते हैं, क्या मैं सोच सकता हूं? कुछ मकान बनाना है तो प्लानिंग करते हैं, यहां खिड़की होनी चाहिए, यहां ये होना चाहिए, तो इसके लिए भी मुझे प्लानिंग करना पड़ता है। उसको कहा अपने आप को समझाओ, अगर ये इतना दुख देते हैं, इतना ये करते हैं, क्या मैं उनके लिए शुभ कैसे सोचूं? भगवान को और शास्त्रों में कहने में क्या है, ये हो नहीं सकता है, लेकिन ये करना है। कैसे करो? सोचते हो। इसको कहा मंथन। सुनते हैं हम तो मंथन करते हो तो आचरण में आता है, नहीं तो सुनने से, लिस्निंग इज नॉट एवरीथिंग। तो बुद्धि सारे शरीर को चलाती है और उसी बुद्धि का ज्ञान नहीं है। इसको कहा कि लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक ज्ञान के अंदर करने वाली, आचरण में लाने वाली वो बुद्धि है। तो इसी का आप और हम सब मिलकर चर्चा करेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ आप भी राय देना ये क्या चीज है। सिर्फ सुन करके जाना नहीं, आप अपने विचार भी देना, क्योंकि दोनों हम सब मिलकर के वसुधैव कुटुंबकम का परिवार है हम। आप अलग, हम अलग नहीं है। किसी ने रंगीन कपड़े पहने, किसी ने सफेद पहने हैं, लेकिन हम सब एक ही ऊपर से आए थे। कोई इधर नहीं जाएगा, कोई इधर नहीं जाएगा। कहां गया हो? उधर ही गया है। एक ही सूर्य है, आपको भी रोशनी देता है, मुझे भी वही देता है, मुझे अलग नहीं देता है, आपको अलग नहीं देता है। तो ये लक्ष्य लेकर के हम और आप सभी इस भव्य सभा मंडप में, इसको कहते हैं ज्ञान सरोवर, ज्ञान एक रोशनी है। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, थोड़े हैं, बहुत होती है, भीड़ होती है, कुछ सुन नहीं सकते, कुछ समझ नहीं सकते हैं। तब का छोटा परिवार सुखी परिवार। तो आराम से बैठो, आराम से रहो और कुछ बात सुनो, आप भी राय देना, ऐसे आप और हम सब मिलकर एक सुखमय संसार, ये लक्ष्य आपका भी और हम भी ये चाहते हैं, सारा संसार चाहता है कि जीवन में सुख और शांति चाहिए, वो अपने आप नहीं आती है। तो यहां हम बीज बो के जाएंगे तो वहां संसार में जाने का इसका फल खाएंगे। यही लक्ष्य लेकर आप सबका बार बार स्वागत करता हूं, बार बार आप सबको निमंत्रण करता हूं, देता हूं कि आपका घर है भगवान का घर, हमारा इतना नहीं, आपका भी घर है। आप जब भी अच्छा लगता है, अशांति है, आप आइए और सारे विश्व के अंदर ब्रह्मा कुमारी इसके आश्रम एक एक किलोमीटर के अंदर है, वहां सवेरे शाम को जाइए कि नजदीक चाहिए, यहां सारा सदा नहीं आ सकते हैं, नजदीक। क्यों? कि आज रोज ज्ञान चाहिए, अभ्यास से ही हम स्वयं को परिवर्तन कर सकते हैं, एक दफा सुनने से नहीं होता है, रोज चाहिए। तब का प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इसी के साथ आप सबका बार बार धन्यवाद कहता हूं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अति प्रिय राजयोगी ब्रह्मा कुमार रामनाथ भाई जी का, एक बार जोरदार कर्तव्य ध्वनि से आपका धन्यवाद करते हैं। आपने बहुत ही शॉर्ट में और सुंदर शब्दों में समझाने की कोशिश की है कि आप यहाँ पर आए हो, तो कहा जब तक आत्म चित्यो नहीं तब तक सर्व साधना झूठी। कहने का मतलब, चाहे हम संसार में अपने परिवार में रहते हुए कितना भी अपने जीवन में सुख शांति आनंद प्रेम की अनुभूति करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम हमें अपने आत्मा की ज्योति को जगाने का प्रयास करना है। तो आप सभी त्रिदिवसीय कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर आप उपस्थित हैं, तो 3 दिन के लिए आपको राजयोग सत्र में आत्म परमात्मा का मिलन हम कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर सुंदर प्रकाश डाला जाएगा। और भाई साहब ने भी हमें यही समझाया कि सबसे पहले हमें अपनी आत्मा को अनुभव करना है, क्योंकि कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन इज लीड टू गॉड रियलाइजेशन। आज हम मेडिटेशन तो सीखते हैं, मेडिटेशन तो करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन के अंदर कुछ न कुछ मिसिंग है, और उसी मिसिंग को आप फुलफिल करने के लिए आप सभी अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पर आए हैं। तो जैसे आध्यात्मिकता की जो बात की, तो मुझे एक बात याद आती है कि वर्तमान समय हम सभी संसार के व्यक्तियों ने विज्ञान के आधार पर बहुत सुख सुविधा के साधन जुटाए। आज देखो, एक अच्छी रात को नींद के लिए हमने एयर कंडीशन रूम बना दिया, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो 75% लोग यही कंप्लेन करते हैं कि हमें रात को नींद नहीं आती। स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, मेडिसिन्स लेते हैं और अनेक प्रकार का ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन साइकोलॉजिकल डिसीजेस बढ़ती जा रही हैं। इतना ही नहीं, आज इंसान ने सुख सुविधा को प्राप्त करने के लिए चंद्रमा पर चले गए, लेकिन उस चंद्रमा जैसी शीतलता को, उस चंद्रमा के गुण को अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया। चंद्रमा पर तो चले गए, लेकिन उसकी शीतलता को अपने जीवन में अनुभव नहीं किया। इसी प्रकार आज हमने देखा कि बहुत शॉर्ट टाइम में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, हम सुख का अनुभव करते हैं, लेकिन कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, एयर क्रैश हो जाता है, तो हम बहुत दुखद स्थिति का अनुभव करते हैं। लेकिन इस ईश्वर विश्वविद्यालय के अंदर परमपिता परमात्मा शिव हमें एक जीवन जीने की, सुख शांति से परिपूर्ण जीवन जीने की एक सच्ची शिक्षा देते हैं, और वो है आध्यात्मिकता। तो इसी विषय पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे बीच में हमारी बहुत महान तपस्वी, योगी, शांत, शीतल, गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस बनाने वाली और न सिर्फ लोकप्रिय, लेकिन वो ऐसी पर्सनालिटी जो प्रभु प्रिय है, स्वयं भगवान ने उनके सिर पर हाथ रखा, ऐसी पर्सनालिटी, ऐसी हमारी आदरणीय, परम परम आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी, आप इतनी महान तपस्वी आत्मा है, संयुक्त प्रशासिका ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू। आपने न सिर्फ भारत की, लेकिन पूरे एशिया, पैसिफिक, जर्मनी आदि अन्य स्थानों पर जाकर के इस ज्ञान का, प्रकाश का उद्बोधन किया है। और आप हम सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि आज इस ज्ञान सरोवर परिसर में बैठे हैं। आप आदरणीय दीदी जी इस ज्ञान सरोवर परिसर की निर्देशिका हैं। ऐसी परम आदरणीय दीदी जी के सानिध्य में हम 3 दिन यहाँ पर रहेंगे। तो मैं आदरणीय दीदी जी बाल्यकाल से ही इस ईश्वर विश्वविद्यालय में जुड़े हैं, और अपना डॉक्टरी प्रोफेशन करते हुए दोनों डबल डॉक्टर, एक अपने फिजिकल डॉक्टर और एक रूहानी डॉक्टर बनकर के विश्व के अनेक आत्माओं को टेंशन से, अनेक प्रकार के डिप्रेशन से, अनेक प्रकार की बीमारियों से दूर करने का एक बहुत श्रेष्ठ उच्चतम कार्य किया है। तो दीदी जी के लिए मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आपके विचार ही आपकी पहचान है, आपके विचार ही आपकी पहचान है। चेहरे पर सदा आपके मुस्कान है, चेहरे पर सदा आपके मुस्कान है। आपकी उपस्थिति ही आज की शान है, आपकी उपस्थिति ही आज की शान है। हम खुश नसीब है, हम खुश नसीब है कि आज आप हमारे साथ हैं, कि आज आप हमारे साथ हैं। क्योंकि दीदी जी बहुत व्यस्त रहते हैं, देश विदेश के टूर करते रहते हैं, तो हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे दीदी हमारे बीच में हैं। तो हम बहुत ध्यान से सुनेंगे, हम सबको विशेष आशीर्वचन देने के लिए हमारी दीदी जी हमारे बीच में हैं, परम आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी।
ओम शांति। आज के परिस्थितियां से आप बहुत परिचित हैं कि आज के कलयुग में क्या क्या हो रहा है। हम समझते हैं कि हम लोगों ने बहुत प्रगति की है, कुछ घंटों में हम कहां से कहां पहुंच जा सकते हैं, कुछ सेकंड में हम यहां से कोई भी देश में बातचीत कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं, और इतने तक के मेडिसिन में हम हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इसी रीत से साइंस में हम बहुत तरक्की की है। पर हर एक अपने आप से पूछे, हम सुखी है, हमें शांति है, हम बेफिक्र है, और अपने को जानते हैं, दुनिया की कई बातों को जानते हैं, चांद, सितारे, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, सब कुछ ज्ञान है। परंतु ये बात है, न अपने को जानते हैं न भगवान को जानते हैं। भगवान को मानते जरूर है, याद जरूर करते हैं, परंतु जानते नहीं। इस कारण इतनी भक्ति करते हुए भी आज लोगों को शांति नहीं, सुख नहीं। जब तक तीर्थ यात्रा करते हैं खुशी रहती है, घर में आकर फिर वही के वही। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आपको इस बात का ज्ञान मिलेगा, हम कौन है, परमात्मा कौन है, और कैसे याद करना है, कैसे हम आंतरिक सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका ज्ञान सरोवर में हम फिर से स्वागत करते हैं। विशेष मंच पर उपस्थित महात्माएं साधु संत अपना समय निकाल करके यहाँ आए हैं, ये बात की बहुत खुशी है। और आप सभा में उपस्थित धार्मिक वृत्ति के लोग भी आए हैं, जरूर यहाँ से अपना उच्च भाग्य बनाने की विधि सीख कर जाएंगे, भाग्य विधाता को जानेंगे और कैसे हमारा भाग्य बनाना है उसका तरीका भी आप जान सकेंगे। तो इसलिए आप सभी को लिए हमारी यही शुभेच्छा है कि आप अपना ऊंचा भाग्य बनाएं और सदा के लिए सुख शांति प्राप्त करें। ओम शांति।
बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय दीदी जी का अभिवादन करेंगे। शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में हमें आशीर्वचन दिया। कहने का तात्पर्य है कि तीन दिन आप सभी आए हैं तो आप अपने समय को वैल्यूएबल, समय को वैल्यूएबल बनाएं, और इस समय को आप वैल्यूएबल बनाएंगे तो आपका जीवन भी वैल्यूएबल बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात सिखाई जाती है कि देखो, लोगों से बात करने के लिए फोन की जरूरत है ना। आज घरों में एक दूसरे से बात करने के लिए फोन की जरूरत है, लेकिन परमात्मा से बात करने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए? परमात्मा से बात करने के लिए दिल चाहिए। लोगों से बात करने के लिए बिल चाहिए, चाहिए ना? रिचार्ज कराते हैं ना, रिचार्ज के बिना तो होगा नहीं, होगा। लेकिन एक बात मैं आपको कहती हूं कि परमात्मा से बात करने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए बोलिए? विल चाहिए। क्योंकि जहां चाह है वहां राह है ना। बहुत सारे लोगों ने यहां पर आना था लेकिन दीदी ने कहा ये भाग्य बनाने का टाइम है, तो जिनका श्रेष्ठ भाग्य था वो सब यहां उपस्थित हो गए, वो सब यहां पर आ गए, है ना। तो आप बहुत बहुत परम सौभाग्यशाली हैं। किसी ने बहुत सुंदर कहा, आप भगवान के घर में आए हैं, हम बहुत सारी नेगेटिव बातें, नेगेटिव चीजें, नेगेटिव संबंध, नेगेटिव संस्कार, बहुत कुछ लेकर के आए हैं। तो किसी हॉस्पिटल में लिखा था ऐसे कि तुम यहां पर आए हो, अपना दिल खोलो लोगों के आगे, वरना खोलना पड़ेगा डॉक्टरों के आगे। और वो भी कैसे खोलना पड़ेगा, आरी और औजारों से खोलना पड़ेगा ना, खोलना पड़ेगा ना। लेकिन हम ये कहते हैं आप सभी आए हो, अपने दिल को खाली करके जाइए। यहां बहुत सुंदर मेडिटेशन रूम बना है, आप दिल से उस पिता परमात्मा के मेडिटेशन कक्ष में बैठे और दिल से अपनी सारी बातें परमात्मा से कह, दिल खोल करके कहिए, कभी हार्ट अटैक नहीं होगा। दूसरा कि अगर हम किसी को शेयर करेंगे तो शायद वो बातें किसी को शेयर करेंगे, आपके कहेंगे किसी को बताना नहीं, लेकिन वो जरूर बता देंगे, है ना। लेकिन अगर परमात्मा के आगे अपने दिल को खोलेंगे ना, तो परमात्मा आपको मोटिवेट करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको प्रॉपर जो है शिक्षा देंगे। तो इस कॉन्फ्रेंस में अपने दिल को परमात्मा के आगे खोलना, यही हमारी शुभ भावना है। आगे इस विषय को कंटिन्यू करते हुए हमारे बीच हमारी परम आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमारी हमारे बीच शुभ प्रेरणाएं देने के लिए हमारे अति प्रिय भ्राता राजयोगी ब्रह्मा कुमार करुणा भाई जी के लिए मैं कहना चाहूंगी, आप जोरदार तालियों से हमारे भाई साहब का अभिवादन करेंगे। आप जैसे ही आपका नाम है, आप वरिष्ठ भाइयों में से, आप इस संस्था के वरिष्ठ भ्राता जी हैं और इस संस्था को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाने में आपका सबसे बड़ा रोल है। आप मल्टीमीडिया विभाग से इस संस्था को कहां से कहां पहुंचाया है, घर घर में आज पीस ऑफ माइंड चैनल, अवेकिंग टीवी आदि जो भी ब्रह्मा कुमारी की चैनल है इनको आप देखते हो और साथ साथ ब्रह्मा कुमारी की हर एक्टिविटीज में बहुत ही एक्टिवली डिसीजन लेते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं। तो ऐसे हमारे बीच हमारे भ्राता जैसे हमारे शिव बाबा करुणा सागर हैं, ऐसे हमारे आदरणीय भ्राता जी भाई साहब भी ऐसे करुणा की मूर्ति हैं जो हम सबको अशुभ प्रेरणाएं देने के लिए हमारे बीच में आए हैं। भ्राता भाई साहब करुणा भाई जी।
सत्यम शिवम सुंदरम। पूज्य आज के हमारे मेहमानों को या आध्यात्मिक जगत के इस विश्व कल्याण के लिए ईश्वर ने आप सबको इस सृष्टि पर भेजा है और आप सभी ने इतनी सेवा इस भारत में किए हैं जो आज भी भारत को एक आध्यात्मिक देश के रूप में मानते हैं, वो आप सभी की त्याग तपस्या के कारण है। आज हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आपका पदार्पण से बहुत खुश है, क्योंकि मेरा सौभाग्य रहा 1960 में इस धरती पर आने का, जब इस संस्था के हमारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा मातेश्वरी और अनेक दादियों से सुनने का देखने का सीखने का सौभाग्य मिला था। बाबा जी ने कहा था कि बच्चे एक ऐसा भी समय आएगा जिन्होंने इस भारत को अन्य देशों जैसा जो हम कहते हैं, जो आज भारत के लोग भी जो विदेश की संस्कृति को अपनाते हैं, केवल जीवन का लक्ष्य यही रहते हैं कि भाई डॉलर कमाने का, परंतु हमारे जो संत है इन्हों के जो त्याग तपस्या से आदर्श जीवन से हमारा भारत आज भी एक आध्यात्मिक केंद्र बनकर रहे हैं। तो इसीलिए आप सबको दिल से मैं स्वागत करता हूं, स्वागत करता हूं, स्वागत करता हूं। 3 दिन आप सबके साथ रहने का सौभाग्य हम सबको मिला है। वैसे हम लोग अपना सत्संग करते हैं, सीखते हैं और आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का केंद्र सारे विश्व में 140 देशों में है, फिर भी बाबा ने कहा है हम सब विद्यार्थी हैं। आध्यात्मिक शिक्षा पढ़ने से या अन्य को बहुत अच्छे शब्दों में सुनाने से ही नहीं होता है, तो जीवन पर्यंत हमको अपना जीवन में अपनाकर, मुझे याद है मैंने ब्रह्मा बाबा से पूछा था, बाबा हम लोगों को कौन सा किताब पढ़ करके सुनावे, तो उन्होंने कहा बच्चे उसके लिए इस दुनिया में लाखों हमारे संत है सज्जन है, आप लोग एक विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो विद्यालय से बच्चे प्राप्त करते हैं कि डॉक्टर बनेंगे इंजीनियर बनेंगे लॉयर बनेंगे, जो अपना प्रोफेशन के होते हैं वो अपना कार्य से अपने को सिद्ध करते हैं। तो इसी तरह से ईश्वरीय विश्वविद्यालय के हम बच्चे जो भी यहां सीखते हैं तो जितना हमने सीखा है वो अपने जीवन से दूसरों को हम दे सकते हैं। तो यही हम ईश्वर के लिए, जो ईश्वर का जो कार्य इस सृष्टि को फिर से सनातन धर्म करने की जो कार्य चल रहा है, क्योंकि मैंने बाबा से ये भी पूछा था बाबा तो आखिर हम लोग क्या बना रहे हैं क्या करना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा बच्चे यही भारत में एक धर्मता जिसको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म, तो उसी धर्म का अब फिर से इस सृष्टि पर हम लोग स्थापना कर रहे हैं अपने जीवन से, न कि कोई पर्टिकुलर किताब से। हां हम बहुत प्रभावित है हमारे ग्रंथों से भगवद गीता से, सब पढ़ते हैं अपने लिए पढ़ते हैं, परंतु दूसरों के लिए हम अपना जीवन से ही करने का प्रयास करते हैं ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। तो आपसे भी हम 3 दिन बहुत कुछ सीखेंगे और हमारी जीवन को भी आप देखकर हमको भी अपना विचार देंगे, ऐसी आशा करते हुए फिर से मैं आप सबको दिल से स्वागत करता हूं, स्वागत करता हूं, स्वागत करता हूं।
बहुत सुंदर, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से भाई साहब का अभिवादन करेंगे और शुभ प्रेरणाओं में आज यही हमें लक्ष्य मिला कि जिस प्रकार से हमारे पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जो कि संस्था के फाउंडर रहे, इतनी बड़ी संस्था जो आज चल रही है, तो हमारे पिताश्री ब्रह्मा बाबा का यही लक्ष्य था कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। और इसी संकल्प को लेकर के आज पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने खुद इतना बड़ा कार्य करके दिखाया, जो कि आज हम अपने भ्राता करुणा भाई जी के जीवन से हम देख रहे हैं कि किसी को कहने के बजाय खुद परिवर्तन करके दिखाओ। कहने से कहेंगे तो कहेंगे पहले खुद तो बदलो, है ना। तो ब्रह्मा बाबा हमेशा कहते थे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो आज इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कि आध्यात्मिकता के द्वारा वर्तमान समय संसार के अंदर ये जो परिस्थितियां आ रही है सबके जीवन के अंदर, चाहे वो देश के लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए, क्योंकि आज हम सभी देख रहे हैं सिविल वॉर, विनाश की ओर, ग्रह युद्ध, एटॉमिक वॉर्स हम सभी देख रहे हैं। और ऐसे समय पर अगर देखा जाए तो पूरे विश्व की नजर भारत के ऊपर है, क्योंकि भारत ही ऐसा एक देश है ऋषि मुनियों का, संतों का, तपस्वियों का, त्यागियों का ये देश है। तो इसी देश के ऊपर, क्योंकि हर कोई कितना भी भारत के साथ अन्याय करता है, लेकिन भारत वही शांति प्रिय देश है जो कि वो बाहुबल से नहीं लेकिन अपनी शांति की शक्ति के द्वारा पूरे विश्व को शांति का मैसेज देता है। इसीलिए आज भारत को एक आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता है। तो ऐसे क्योंकि परमात्मा ने भी कहा कि जब ऐसा समय आया जब ऋषि मुनि साधु संत महात्माओं ने अपनी पवित्रता के बल से इस भारत को थमाया था, तो क्यों ना ऐसे संतों के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। तो उसी आज हमारे बीच में अतिथि विशेष के रूप में परम आदरणीय ब्रह्मर्षि स्वामी महेश योगी जी, आपसे मैं अनुरोध करती हूं कि आप मंच पर आए और आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत अपने विचार हम सबके बीच में रखिए। आप अयोध्या से हमारे बीच में आए हैं, बहुत बड़ी बात है कि अयोध्या की पावन धरनी से हमारे बीच में आए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप आए और अपनी वाणी हम सबके बीच में रखें।
ओम शांति, जय श्री राम। आज ध्यान और पवित्रता की इस पावन भूमि प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय में श्री अयोध्या धाम से भगवान श्री राम की नगरी से मुझे इस भूमि पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस भूमि को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आज यह संस्थान जो संपूर्ण विश्व में शांति और मानवता को स्थापित कर रहा है, इस भूमि पर इस ज्ञान सरोवर की अध्यक्षता कर रही है हमारी पूजनीय राजयोगिनी दीदी, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इस संपूर्ण प्रकल्प में जो हमारे सभी सेवाधारी भाई बहन दीदियां लगी हैं, आप सभी को बहुत बहुत कोटिशः धन्यवाद जो संपूर्ण भारतवर्ष से भारत को आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से संपूर्ण विश्व में प्रतिष्ठित करने वाले मनीषी हैं। ऐसे सभी पूज्य संत जनों का मैं सादर वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस प्रांगण में उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं को मैं पुनः प्रजापति ब्रह्मा जी से ये आत्मिक निवेदन करता हूं कि आपने वह दिव्यता सदैव बनाए रखें। आज हम जिस तरह से आध्यात्मिक रूप में भारत का एक छवि दिखाई पड़ता था, हम इस वसुंधरा पर भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने वाले हैं, भारत को सोने की चिड़िया बनाने वाले हैं। लेकिन जो वर्तमान की स्थिति चल रही है, हमारी आत्मिक चेतना में इतनी गिरावट आई, हमारी बौद्धिक चेतना में इतनी गिरावट आई, कहीं ना कहीं हम अपने निम्न पायदान तक आ गए। भारत क्या था? भारत ऋषियों का देश है, भारत संतों का देश है, और हमारे भारत के एक एक मनुष्यों ने अपनी दिव्य चेतना को, अपनी आत्मिक शक्ति को प्रबल बनाया और संपूर्ण वसुंधरा में एक भारत बनकर के, वो स्वयं में भारत बनकर के इस दुनिया का नेतृत्व करते रहे। हमारे एक भगवान शंकराचार्य जगे, चार धर्म पीठों की स्थापना करके संपूर्ण वसुधा पे धर्म को पल्लवित कर दिया। हमारे एक ऋषि महर्षि पतंजलि के रूप में जगे, 84 लाख योनियों पर अनुसंधान करके पूरी दुनिया को योग दे दिया। हमारे एक स्वामी विवेकानंद जी जगे, संपूर्ण विश्व में मानवता को स्थापित कर दिया। उसी तरह से हमारे एक महान मनीषी पूज्य प्रजापति ब्रह्मा जी का, वो जागृत हुए और संपूर्ण विश्व में शांति का संदेश दे दिया, मानवता को स्थापित कर दिया। आज हमें यह सोचने का विषय है हमारे लिए कि जो हमारे महापुरुषों का, जो हमारे मनुष्यों का चिंतन था, जो उनकी साधना थी, जो उनकी ध्यान की प्रविधि थी, जिस मार्ग पर चल करके उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के तहत संपूर्ण विश्व को अपने अंदर समाहित कर लिया और भारत को विश्व गुरु बना दिया, जो वो दे करके हमें गए, आज मैं समाज को क्या दे रहा हूं, हम आने वाले पीढ़ी को क्या दे करके जाने वाले हैं, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और जिसके लिए ये प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय कार्यरत है। ये हम तभी कर सकते हैं जब हमारी आत्मिक चेतना प्रबल हो, हम मानसिक रूप से परिपक्व हो। शरीर हमारा कुछ नहीं करता जब तक हमारा मस्तिष्क संचालन न करे, और मस्तिष्क के संचालन के लिए हमें अष्टांग योग को आत्मसात करना होगा। हमारे जो सात चक्र हैं उनकी जागृति कैसे हो, इस पर ध्यान देना होगा। क्योंकि जब तक हमारी आंतरिक जागृति नहीं होगी, जब तक हम स्वयं को पहचानने में असमर्थ हैं, तब तक हमारी आध्यात्मिक क्षरण ऐसी होती रहेगी। क्योंकि हम आध्यात्मिकता में अभी बहुत निम्न स्थिति में जा रहे हैं, और आध्यात्मिकता को प्रबल बनाने के लिए हमें स्वयं को प्रबल बनाना होगा। क्योंकि जब हम स्वयं जागृत हो जाते हैं तो हम एक बनकर के, भारत बनकर के खड़े हो जाते हैं। लेकिन स्वयं की जागृति के लिए, जैसे इस ऑडिटोरियम में हम सभी आ गए, अब हमें करना क्या है, हमारे शरीर की जागृति के लिए, हमारी आंतरिक चेतना की जागृति के लिए, जैसे एक स्विच बोर्ड होता है और स्विच बोर्ड में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कौन सी स्विच हमें ऑन करनी है जहां पर रोशनी आ जाए, प्रकाश आ जाए, हम उस स्विच को ऑन करते हैं और उस रूम में प्रकाश आ जाता है। उसी तरह से हमारे शरीर में भी सारी इंद्रियाएं कार्यरत हैं, हमें क्या करना है, उन बिंदुओं पर ध्यान करना है जिससे हमारे शरीर में प्रकाश हो जाए और हम स्वयं का दर्शन कर सके। इस उद्देश्य को लेकर के यह प्रजापति ब्रह्म कुमारी संस्थान पूरे विश्व में कार्य कर रहा है। हम सभी को इसका अध्ययन करना है, श्रवण करना है और अपने नैतिक जीवन में आत्मसात करके एक नए भारत की तरफ, एक दिव्य भारत की तरफ, वसुधैव कुटुंबकम की तरफ परिवर्तन करके भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके समक्ष रखूं, वीव क्या है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन मेरी वह शक्ति है, कभी कभी लोग जो इस भौतिकता के युग में हैं, उन्हें महसूस नहीं होता है, वो आध्यात्मिकता से परे हो जाते हैं। तो मैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि वीव वह शक्ति है जो हमारे ऋषियों के अंदर थी। हम जैसे आज हम अपनी मोबाइल के डेटा शेयर करते हैं, इसी तरह से हमारे ऋषि अपनी ऊर्जा को शेयर कर लेते थे, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते थे। और वो एनर्जी कैसी, छोटे से टेलीविजन पे जब हम चित्र हमारे आते हैं और हम देखते हैं, श्रवण करते हैं, और जब नहीं आता तो हम एक एंटीना घुमाते हैं, वो वेव को कनेक्ट करते हैं। जब प्रकृति का वेव उस एंटीना से कनेक्ट होता है और उसके बाद उस टेलीविजन पे चित्र आता है, और वो वेव किसको पकड़ता है, वेव मेरी मेमोरी को पकड़ता है। जो अपनी मन शक्ति में मैं सोचता हूं वही मेरे रिमोट में ऑन होता है और वही टेलीविजन पर दिखता है। ये मेरी मना शक्ति को कंट्रोल करने, मेरे वेव हमारी मना शक्ति पर इतना प्रभावी होगा। तो अगर मेरे द्वारा बनाई हुई एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रकृति के वेव को पकड़ती है और वो मेरे मस्तिष्क को पढ़ती है और जो हम चाहते हैं वह टेलीविजन पर दिख जाता है, तो अगर यह मेरा मस्तिष्क स्वयं परमात्मा के वेव से कनेक्ट हो जाए तो मेरी आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह कैसा होगा। हम स्वयं में अकेले भारत बनकर के इस वसुंधरा का नेतृत्व करने के लिए सक्षम हो सकते हैं, संपूर्ण वसुधा को अपने में आत्मसात करके एक नए भारत का अभ्योदय कर सकते हैं। और भारत का प्रत्येक भाई, प्रत्येक बहन जब इस दिव्य स्वरूप का अनुभूति करने लगेगा, यही भारत का परिवर्तन होगा। और यही जो हमारे पूज्य प्रजापति ब्रह्मा जी का एक संकल्प है, एक उनकी जो अवधारणा रही है, एक उनका जो एक सोच रहा है, उसी सोच की पूर्ति होगी। और इस पूर्ति में के लिए आज संपूर्ण भारत लग चुका है, संपूर्ण विश्व लग चुका है। इसमें प्रयासरत सभी हमारे दीदी, सभी हमारे भ्रातागण, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। श्री हनुमान जी महाराज की ऐसे ही अनंत ऊर्जा इस भूमि पर पल्लवित करते रहे और भारत पुनः वैभवशाली आध्यात्मिक रूप से बने। और पूरा विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। ओम शांति, जय श्री राम।
बहुत 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 धन्यवाद ब्रह्म से स्वामी महेश योगी जी, आपने बहुत सुंदर विचार हम सबके बीच में रखे। अभी हमारे बीच में महाराज पवन कुमार दास फलाहारी अयोध्या से आए हैं। आपसे भी अनुरोध करते हैं कि आज वेलकम सेशन है तो अपनी शुभ प्रेरणाएं 2 मिनट में हम सबके बीच में रखेंगे।
भारत माता की, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार की, पिता ब्रह्मा जी की, सभी भक्तों की, सभी ब्रह्मा कुमारी बहनों की और सभी ब्रह्म कुमार को सादर नमन करते हुए, क्योंकि हमारा जो संबंध है वो क्या है, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबके अंदर परमात्मा का निवास है, बस उसको हमको पहचानना है। हम आत्मा है, आत्मा को परमात्मा से मिलने की वो अथाह उत्कंठा होनी चाहिए। ये जो हमारी प्रजापिता ब्रह्मा विद्यालय है, ईश्वरी विद्यालय है, केवल हम लोगों के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए आया है कि हम मानव होकर के अपनी मानवता को पहचाने। हमारा कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्य को पहचाने, इसलिए यहां पर आए हुए हैं। और हम इस संस्था से जुड़ करके आत्म कल्याण करें, अपना कल्याण हो जाएगा, स्वकल्याण होगा तभी दूसरे का कल्याण होगा, इसलिए यहां पर आए हुए सभी हमारे भाई बहनों को सादर नमस्कार है। और हमारे राजयोगिनी निर्मला दीदी को सादर प्रणाम है, रामनाथ भाई को सादर प्रणाम है, मनोरमा बहन को सादर प्रणाम है, सभी लोगों को सादर प्रणाम है, क्योंकि सब उसी उद्देश्य में लगे हुए हैं जो उद्देश्य प्रजापिता ब्रह्मा जी का था। हम लोग उनके बच्चे हैं, उनकी संतान हैं, क्योंकि वो बैठे हुए देख रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। उस शक्ति को हमको प्राप्त करके, उस शक्ति को जागा करके, बड़े प्यार से, बड़े शांति से, बड़े उल्लास से, बड़ी उत्कंठा से उसकी सार्थकता को हम समझे। ये क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मानुष तन मिला है, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, देवता भी तरसते हैं। इसलिए हम मानव जीवन की सार्थक व समझ करके इस ईश्वरीय महाविद्यालय प्रजापिता ब्रह्मा की संकल्प को सिद्ध करने के लिए उनका सहयोग करें और अपने को पहचाने, अपनी आत्मा को पहचाने। जब हम अपनी आत्मा को पहचानेंगे तभी हमारा कल्याण होगा, जब हमारा कल्याण होगा तो लोग देख करके, सुन करके लोग अपना कल्याण करना चाहेंगे। यही मेरा उद्देश्य है और यही मेरी प्रार्थना है कि सब लोग इसी विद्यालय से जुड़ करके इनके उद्देश्यों को, इनके संकल्पों को पूरा करने के लिए आगे आए और हमारा भारत ऋषियों का, महापुरुषों का, साधना का केंद्र रहा है। ये साधना स्थल है, ऋषियों का क्षेत्र है। बाबे महापुरुषों ने जो तपस्याएं लेकर के वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भंसिका सर्वे सम निरामया सर्वे भद्दान प्रसन्न मा कसिक दुख भाव है, क्योंकि वो भावना करके उन्होंने तपस्या किया और सारे विश्व को अपना समझ करके, ये सारा विश्व भारत ही है जो अलग अलग चला गया है लोगों की भावनाओं से, विचारों से, उत्कंठा से, इसको एक करना है। इसलिए हमारी धरती भारत माता को वो शक्ति देना है, वो पावर देना है जो मेरी मुझे भगवान प्रजापिता ब्रह्मा दे रहे हैं, उसको लेकर के हम जगाएं और अंतर्मन को शुद्ध करें, उसको पवित्र करें, अपने जीवन को पावन बनाए, तभी हमारा जीवन साधो, मुस्कुराते रहे, मस्त रहे और भगवान का जो भी प्रसाद मिले उसको ग्रहण करके भगवान की कृपा समझे। इसलिए जो हमें भाव इस शरीर मिला है इसका सार्थकता, इसकी सार्थकता कभी तभी है जब हम इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आगे आए। और सबको प्रणाम है, सबको अभिवादन है, सबको स्वागत है। जय जय सियाराम, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद महाराज पवन कुमार दास फलाहारी अयोध्या से। आपने बहुत सुंदर विचार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के बारे में रखा। और अभी हमारे बीच में सिरसा से बाई जी संत चेतन आनंद जी सिरसा हरियाणा से हमारे बीच में आए हुए हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप भी अपने शुभ प्रेरणाएं हमारे बीच में रखेंगे।
ओम शांति शांति। सब भाइयों और बहनों को हमारा श्री बाबा जी की ओर से नमन, और सबको मुबारक हो जो हमें यहाँ बुलाकर आपने बहुत उपकार किया है। बाबा जी का बहुत उपकार है, जैसे कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी सतगुरु आपने जिन्हें गोविंदिया मिलाए। कि आज हम उस सतपुरु के बलिहार बलिहार जाते हैं जिन्होंने हमें यहाँ तक, मालिक ने यहाँ सब को मिलाया, बाबा जी के दर्शन कराए और सब भाई बहनों को मिले और सच्ची खुशी प्राप्त की। ऐसी सच्ची खुशियां हम सबको प्राप्त हो। जैसे कहते हैं कि खुशियां के लिए ही हमें ये जीवन मिला है। सच्ची खुशी कहाँ से मिलती है? जो मालिक के दरबार में मिलती है। यहाँ आज हम इतने खुश हैं कि हमें ऐसी खुशी जो मिली है ये किसी विरले जीव को ही मिलती है। जैसे कहते हैं महापुरुष ही इस धरा पर आकर हमको सच्ची खुशी प्रदान करते हैं। तो ये खुशी जो आज मिली है, हम आपके आभारी हैं जो हमें खुशी प्राप्त हुई है। ये ऐसी ही सच्ची दात हमें मिलती रहे, ऐसे ही महापुरुष जो हम जीवों पर उपकार करते हैं, जैसे कहते हैं परोपकार की खातिर महापुरुष अवतार धरे, अपने जीवों के कल्याण की खातिर ही महापुरुष इस धरा पर आते हैं और हमें सच्चा दान भक्ति का देते हैं, हमारी सच्ची खुशियों से झोलियां भरते हैं। और ऐसे ही हमें ऐसी खुशी प्राप्त होती रहे और ऐसी खुशियां सब को मिलती रहे। और आज सारे भाइयों बहनों को हमारी तरफ से नमन है। ओम शांति शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद संत चेतन आनंद जी बाई जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर विचार हमारे बीच में रखे। अभी हम सब के बीच में काफी समय से जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, ऐसी हमारी परम आदरणीय योगी राजयोगी तपस्वी मूरत ममतामयी, ऐसी ब्रह्मा कुमारी मनोरमा दीदी जी अध्यक्षा धार्मिक प्रभाग विंग, और आप इलाहाबाद प्रयागराज की धरनी से आज हम सबके बीच में अपने अध्यक्षा उद्बोधन के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मनोरमा दीदी जी लौकिक शिक्षा एमए किया हिंदी में, डिप्लोमा इलेक्ट्रो होम्योपैथी किया, उसके बाद सामाजिक नैतिक अन्य क्षेत्रों में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। आप देश विदेश की अनेक सेवाओं में अपना जीवन लगाते हो और आप एक बहुत ही उम्दा पर्सनालिटी हैं। इतना ही नहीं, आप धार्मिक प्रभाग के संतों महंतों की विशेष रूप से प्रयागराज में बहुत अच्छी सेवाएं करते हो। आपने मीडिया प्रभाग की भी जोनल कोऑर्डिनेटर के रूप में सेवाएं दी और ब्रह्मा कुमारी के युवा प्रभाग की ओर से भी आपने बहुत अच्छी साइकिल यात्रा रैली आदि में अपना योगदान दिया। बाल्यकाल से ही बहुत ही उम्दा व्यक्तित्व लेकर के अनेक आत्माओं को अपनी ओजस्वी तेजस्वी वाणी से आपने सबको लाभान्वित किया। ऐसी मनोरमा दीदी जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि आप मंच पर आए और अपने अमूल्य उद्बोधन हम सबके बीच में, अध्यक्षा भाषण हम सबके बीच में रखें। आपके लिए मैं ऐसा ही कहूंगी, महक उठा है ये आंगन, महक उठा है ये आंगन, जब से आप पधारे हैं एहसास दिल में होता है कि सदियों से आप हमारे हैं, सदियों से आप हमारे हैं। ऐसी आदरणीय दीदी जी को मैं निवेदन करती हूँ कि आपकी इस अनमोल अनुभवी जो परमात्मा से प्राप्त किया है उस वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। आदरणीय दीदी जी,
ओम शांति। आज के इस पावन अवसर पर जहां हमारे बीच संत समाज उपस्थित हुआ है, भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों से पधारे हुए संत और हमारे बीच परम आदरणीय दीदी निर्मला जी, भ्राता करुणा जी जो उपस्थित थे, भ्राता रामनाथ जी, वयोवृद्ध संत फलाहारी रस बाबा जी जो अभी बोल के गए, भ्राता महेश योगी जी जिन्हें ब्रह्मर्ष की उपाधि प्राप्त है, और संत चेतनानंद जी, साथ ही साथ हमारे बीच कर्नाटक से पधारे हुए संत और कोने कोने से आए हुए कथावाचक एवं अन्य संत, सभा में उपस्थित इस संपूर्ण कार्यभार को वहन करने वाले, क्योंकि आप सब भी जो सभा में बैठे हैं वो यूं ही नहीं बैठे हैं। ये संत समाज कुछ कर पाने में सक्षम होता है आप जैसा कि अभी बहुत देर से हमारे संतों से, हमारी आदरणीय बहनों से सुन रहे थे। हम भारत की एक एक इकाई, भारत को विश्व गुरु के स्तर पर ले जाने के लिए पुनः तत्पर दिखाई दे रहे हैं। हमें ऐसा लगा जब संत हमारे महेश योगी जी बोल रहे थे, अच्छा लग रहा था और सुनने की इच्छा हो रही थी कि इनको सबको सुनते रहा जाए, मेरे बोलने की आवश्यकता नहीं, और आज बोलने का दिन भी नहीं है। आज स्वागत स्वागत हृदय से, भावनाओं से और मन बुद्धि से आपका स्वागत है। इस स्वागत की बेला में इतना ही कहना चाहेंगे कि अंततो गत्वा तमाम सारी दूरियां तय कर लेने के बाद वापस नीड़ में लौटना ही पड़ता है। पंछी पंख फैलाकर जब चलता है आकाश को नाप लेता है, लेकिन सांझ होते ही वापस लौटता है। ठीक उसी तरह इस इंसान ने बहुत प्रगति की, साइंटिफिक भी की। हमारे परमपिता परमात्मा के महावाक्यों में तीन बातें आती हैं, राज सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता, अपने आप में बड़ी मूल्यवान सत्ताएं हैं, और चौथी सत्ता है धर्म सत्ता। तो राज सत्ता की जब हम बात करते हैं, एक जमाना था कि जब बड़ी सिद्धांत परक हुआ करती थी, अपने सिद्धांतों के लिए, अपनी पार्टी के लिए लोग कुर्बान हो जाते थे। देश की आजादी में बहुतों ने कुर्बानियां दी, तो राज सत्ता का कोई मूल्य था। विज्ञान सत्ता ने समाज को पैदल चलने के बजाय साइकिलें मुहैया कराई, गाड़ियां मुहैया कराई, एरोप्लेन मुहैया कराए, और आज बहुत सारे साधन दे दिए। लेकिन बढ़ते हुए कदम आज विनाश की भी इतनी सारी तैयारियां कर चुके हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। कल रात्रि को स्टेशन पर बैठी सुन रही थी कि यूक्रेन में कितने करोड़ों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए और उसकी जो रेडियोलॉजी वेव्स हैं वो न जाने कितनी मानवता को अपने बाहों में समा लेगी। कोई हल नहीं है, न रशिया के पास है, न अमेरिका के पास है, और न वो इस परिणाम को सोच पाने में सक्षम है। वापस आना ही पड़ेगा। विज्ञान सत्ता ने आज तक कोई ऐसी छतरी नहीं बनाई है कि जब आकाशीय युद्ध होने लगे तो हम उसे लगा लेंगे और इस रेडियोलॉजी से बच जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो धूल है, इसके जो कण हैं, जब स्किन का स्पर्श करते हैं तो वहां से गलने लगती है और गिरने लगती है कुष्ठ की तरह। बहुत भयावह, जो दृश्य नहीं देख पा रहे वो देखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और जब हम धर्म सत्ता की बात करते हैं तो जहां कथनी और करनी में कोई भेद नहीं था, मुझे बड़ी खुशी हुई ब्रह्मर्षि सुन करके कि हमारे बीच भी आज एक ऐसा संत मौजूद है। वरना विश्वामित्र जी ने तो बहुत तपस्या की थी, उन्हें राजर्षि कहके संबोधित किया लोगों ने। बोले मैं नहीं मानूंगा, मुझे ब्रह्मर्षि की डिग्री चाहिए, राजर्षि की नहीं। और पुनः तपस्या में लीन हो गए तो लोगों ने उन्हें देवर्षि की पदवी दी। बोला ये भी नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मर्षि की चाहिए। और जब पुनः तपस्या में लीन हुए आखिर उन्हें कहना पड़ा उठो ब्रह्मर्षि। बोले गड़बड़ है, मैं कैसे मान लूं कि मैं ब्रह्मर्षि हो गया? अगर मैं ब्रह्मर्षि हो गया तो सारे वेद मुझे वर्ण कर लें, मैं समझ जाऊंगा कि हां मैं ब्रह्मर्षि हो गया। तो ब्रह्म ऋषि बनने के लिए कठोर तप, कठोर साधना। और आज आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में पधारे हैं, आपका कोटि कोटि स्वागत है। और आप यहां से वो यात्रा शुरू करेंगे जिसे संतों ने, ऋषियों ने, रहनुमाओं ने अपदीपो भव का नाम दिया है। हमें स्वयं अपना दीपक बनना होगा, स्वयं को जागृत करना होगा। और नचिकेता ने जो प्रश्न यमराज से किया था वही प्रश्न अपने आप से करना होगा, मैं कौन? मुझे नहीं भूलता मेरी परम आदरणीय प्रज्ञा शक्ति संपन्न तपोनिष्ठ दादी जानकी सदैव कहा करती थी, मैं कौन, मेरा कौन? अगर इस पहेली का हल हम खोज लें बहुत कुछ खोज लेंगे। तो पुनः आप सबसे निवेदन है कि आप यहां पधारे, 3 दिन इस पहेली को हल करने में लगा लीजिए तो बहुत कुछ जीवन में पाएंगे, आनंद के पट खुलते चले जाएंगे, अनिवर्चनीय सुख लेकर जाएंगे। और जिसे अतींद्रिय सुख कहा जाता है वह आपके जीवन की मंजिल बन जाएगा। इसी के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनोरमा दीदी जी का। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से दीदी जी का धन्यवाद करेंगे। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में हम सबको शुभ प्रेरणाएं दी कि 3 दिन का अमूल्य समय मूल्यवान बना देना। और अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अभी हम कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दे रहे हैं, आप सभी सुन करके जाना।